अच्छा, सवाल है और बहुत से लोगों को ये बहुत से लोगों के साथ ये सूरत पेश आती होगी। सवाल ये है कि साथ रहते हैं और शोहर के भाई जो हैं उनकी बीवी, उनके साथ कोई मामला हुआ और उन्होंने फिर बाद में बिल्कुल इनकार ही कर दिया कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था। तो अब सवाल ये है कि हमें साथ भी रहना होता है और साथ रहने की वजह से हमारा यानी घर में चूंकि जिम्मेदारियां भी किचन में बारी के लिहाज से तकसीम होती हैं, तो हमें किस किस तरह उनके साथ पेश आना चाहिए। इसमें आला दर्जा ये है, आला दर्जा ये है कि अहसन इला मन असा इलैक, कि उन्होंने क्या कोई बात नहीं, ऐसा करें कोई हुआ ही नहीं, भुला दें उसको, कोशिश करें कि भुला दें, ये सोच कर के इन्होंने हमें जो तकलीफ़ पहुंचाई है और जो कुछ मैंने बात कही मुझे झुटला दिया, तो उसके बदले में आखिरत में बहुत बड़ी कोई नेमत मुझे मिलने वाली है। बाइद नहीं अल्लाह ताला की शान से कि दुनिया में भी अल्लाह ताला कोई बहुत बड़ी नेमत अता फरमा दें। तो आला दर्जा तो यह है कि बिल्कुल भुला दें, गोया कुछ हुआ ही नहीं, और ये समझे कि उन्होंने आखिरत की एक बहुत बड़ी नेमत मुझे देकर मुझे पर एहसान किया है। एक हकीकत है, ये एक हकीकत है कि जब कोई हमारे साथ बुराई करता है तो वो ये समझे इंसान के नहीं, ये तो मेरे तकदीर में ये तकलीफ़ आने वाली थी, ये नहीं तो कोई और तकलीफ़ आ जाती, इस तकलीफ़ के ज़रिए से अल्लाह ताला ने मेरे गुनाह माफ़ किए हैं और अल्लाह ताला को के साथ मुझे कुर्ब का एक मौका मिला है, अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने का एक मौका मिला है। तो ये ना सोचे किसने क्या और क्या किया, ये सोचे कि अच्छा मेरे लिए एक फजीलत का एक दरवाज़ा खुल गया, मेरे लिए एक गुनाहों की माफ़ी का एक बड़ा रास्ता खुल गया। इस नज़र से उसको देखें, इंसान अपने नज़रों को बदल दे तो बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं। लेकिन जाहिर है इंसान की तबीयत है, जो भी सुनेगा वो सोचेगा कि अच्छा जिसके साथ मामला पेश आता है वो उसको मुश्किल होती है। हाँ ठीक है, मुश्किल ज़रूर है, मुश्किल में तो अजर है, इन्नमा अलुसरी यसरा, मुशक्क़त के साथ ही तो आसानी आती है। तो इसलिए आला दर्जा ये है कि इंसान बिल्कुल उसको भुला दे और अच्छे से अच्छे अख्लाक के साथ इंसान अपने आप को कोशिश करे कि पेश आए और बाकी उम्मीद अल्लाह ताला की ज़ात से रखे, इसलिए कि कुरान करीम में अहादीस में इस पर बहुत अच्छे वादे किए गए हैं। तो अच्छा ही इंसान चाहता है, अपने लिए दुनिया व आखिरत की खैर चाहता है, तो उसी में फ़ायदा है कि जितना अच्छे अख्लाक से इंसान पेश आए उस पेश आता रहे, और नतीजे में चूँकि आगे चूँकि दूसरी जगह जाना ही है और इस घर से मुंतकिल होना ही है, तो अभी दिल जुड़े रहें, आइंदा फिर अलग होने के बाद तो इंशाअल्लाह फिर इस तरह के नौबत भी नहीं आएगी। तो ये चीज़ें इंसान की ज़िंदगी के लिए एक बेहतरीन, सामने वाले के दिल पर भी उसका अच्छा असर पड़ेगा इंशाअल्लाह। अभी ना सही, बाद में जाकर इंशाअल्लाह उसका अच्छा असर ज़ाहिर होगा। बाकी ये कि हाँ ये बात जो इश्काल उसमें है वो ये है कि अच्छा फिर अगर उसको छोड़ दिया जाए तो फिर ये होगा कि हाँ गोया कि वो सही थी और उस मैंने झूठ कहा और वो सही थी, इस चीज़ की फ़िक्र में न पड़ें, हमने अपनी वजाहत कर दी, उसके बाद फिर बाकी मामला अल्लाह ताला पर छोड़ दें, जैसे कर रही हैं ऐसे ही करें, अल्लाह ताला पर मामला छोड़ दें और दुआ करें और अल्लाह ताला से दुआ करते रहें, इंशाअल्लाह उसके नतीजे में कोई खैर ज़ाहिर होगी। मुशक्क़त के बाद तो खैर और आसानी आती ही है, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से वादा है। एक अहम सवाल है, सवाल यह है कि जब कोई मदीना मुनव्वरा जाता है तो जाने वाले के ज़रिए से हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कहलवाते हैं, हालांकि यहाँ से जब अगर हम दुरूद और सलाम पढ़ते हैं तो फ़रिश्ते वहाँ पहुँचा देते हैं और फ़रिश्ते मुकर्रब हैं, तो फरिश्तों के ज़रिए से वह सलाम पहुँचता है। सवाल अहम है कि फिर हम किसी के ज़रिए से सलाम क्यों पहुँचाते हैं जब फरिश्ते वैसे भी मौजूद हैं सलाम पहुँचाने के लिए, जब दुरूद सलाम हम पढ़ते हैं। दोनों चीज़ें, उस पर भी अमल कर लें, इस पर भी अमल कर लें, और हमारे असलाफ़ और अकाबिर से यही तरीक़ा मनकूल है। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह ख़ास तौर पर, उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह ख़ास तौर पर किसी शख्स को, जब वो मदीना मुनव्वरा में नहीं हुआ करते थे, तो ख़ास तौर पर किसी को भेजते थे सवारी देकर के, जाओ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मैं सलाम पेश कर दो। हमारे असलाफ़ से, हमारे अकाबिर से, ताबईन से यह चीज़ मनकूल है। वहाँ जाकर सलाम करना उसकी बात अलग है, और जब वहाँ कोई सलाम कर रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सुन रहे हैं तो उसकी बात अलग है। इंसान खुद जाकर जब सलाम करता है तो ज़ाहिर है कि वो आला दर्जा है, खुद नहीं जा सकता तो किसी के ज़रिए से भेजता है, और वो भी नहीं होता तो अच्छा ठीक है फरिश्ते ही के ज़रिए से पहुँचा दें। तो ये दोनों तरीक़े, इंसान उस पर भी अमल करे, इस पर भी अमल करे, और हमारे असलाफ़ से ये तरीक़ा भी मनकूल है, इसलिए हम उस पर अमल कर लेते हैं। वो भी मकबूल है, ये भी मकबूल है। जैसे होता है ना कि इंसान अपने आम मामलात में एक जोड़ा दूसरे जोड़े कई किस्म के कपड़े रखता है, अच्छा ये भी रख लिया, वो भी रख लिया, ये भी रख लिया कि ये भी काम आएगा, वो भी काम आएगा, क्यों गर्म भी रखा, ठंडा भी रखा, और ये गर्मी में पहनने का भी रखा, और मोटा कपड़ा भी रखा, हालांकि स्वेटर और कोट मौजूद हैं, बस ये कि चल ये भी काम आ जाए, वो भी काम आ जाए। दीन के मामलों में भी इंसान मुख्तलिफ़ किस्म की इबादतों को जमा कर लें, अच्छा सलाम भेज रहे हैं तो ख़ुद भी भेज रहे हैं, फरिश्तों के ज़रिए से पहुँच जाए, कोई जा रहा है अच्छा वो भी पहुँचा दे, बहुत अच्छा है कि हमारा सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बराह रास्त हमारे कहने से वहाँ पहुँच जाए। तो ये मनकूल और साबित है, इसलिए हम उस पर अमल करते हैं। सवाल ये है कि अगर पीर और जुमेरात को रोज़ा कज़ा की नीयत से रखने का मामूल है, क्या हर दफ़ा नियत करनी होगी? कज़ा रोज़े के लिए तो नियत ज़रूरी है, यानी मगरिब के बाद से लेकर जब भी नियत कर लें, जब हर हफ्ते आदत है तो आदत होने का मतलब यह है कि मगरिब बाद से नियत होगी। मगरिब के बाद चूँकि अब दिन शुरू हो गया, तारीख़ी लिहाज से हम देखें चाँद के लिहाज से तो मगरिब से दिन शुरू हो जाता है, तो इतवार के दिन मगरिब हो गई, उसके बाद दिल में ये इरादा है कल रोज़ा रखना है, तो बस ये नीयत पाई गई। ज़ुबान से नीयत के अल्फाज कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बाकायदा कोई नीयत को कोई हाजिर करने की, सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, बस मालूम है कि कल रोज़ा रखना है मगरिब बाद से लेकर किसी भी वक्त, तो नीयत होना काफ़ी है, नीयत के लिए इतना ही काफ़ी है। तो नीयत होती ही है, इसलिए रोज़ा भी दुरुस्त हो जाएगा। ये सवाल ये है कि बीवी के लिए शोहर की क्या हर बात मानना ज़रूरी है, और क्या अगर वो कोई बात नहीं मानती तो गुनहगार है? असल निज़ाम के लिहाज से अल्लाह ताला ने ये निज़ाम रखा है कि घर के, ज़ाहिर है कि जैसे एक इस्लामी तरीक़े से घर का जो निज़ाम चलता है उसमें यह होता है कि अच्छा किसी एक को तो ऐसा होना चाहिए था कि अच्छा फैसला उसका चलेगा, दोनों को बिल्कुल बराबर का दर्जा देते तो मुश्किल होती, किसी एक को तो ऊपर का दर्जा देना था। कुरान ने कहा वलिर्रिजाल अलैहिन्न दर्जा, लेकिन यह भी नहीं है कि शोहर का हर हर हुक्म जैसा भी हो उसको मानना ज़रूरी है, और नहीं माना तो गुनहगार होगी औरत, ऐसा भी नहीं है। लेकिन आम हालात में यही तालीमात हैं कि मर्द कोशिश करे औरत को राहत पहुंचाने की, औरत कोशिश करे मर्द को राहत पहुंचाने की, और अगर कोई ऐसा हुक्म है जिसमें कोई बुराई नहीं है, कोई खिलाफ शरा चीज़ नहीं है, कोई बेहतरी के लिहाज से कोई चीज़ है, तो उन चीज़ों में शोहर की इताअत करना ज़रूरी है। लेकिन ये हम कायदा कुल्लिया के तौर से ये नहीं कह सकते कि हर हर शोहर का हुक्म को मानना औरत के लिए, बीवी के लिए ज़रूरी है, और नहीं माना तो गुनहगार होगी, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, आम तौर पर اکثر چیزوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا جب کہ شوہر نے کوئی مصلحت اور فائدے کے لیے کوئی بات کہی ہو. ایک تو ہوتا ہے ویسے ہی ضد کی وجہ سے کچھ کہہ رہا ہے, ایک ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز کا حکم دے رہا ہے یا بات کہہ رہا ہے جو شرعی لحاظ سے گناہ یا نامناسب ہے, تو اس پر ہے کہ کس طرح کا حکم وہ دے رہا ہے. لیکن یہ کہ عموماً کوشش کی جائے کہ اچھا عمل کر لیا جائے, ورنہ ہوگا کیا کہ وہ اگر وہاں پر شوہر کے حکم کے مطابق نہ کرنے میں اگر گناہ نہیں بھی ہے تو نتیجے کے لحاظ سے پھر لڑائی جھگڑے وغیرہ جو ہے نا وہ کئی گناہوں تک پہنچا دیتے ہیں. لیکن یہ دونوں طرف خیال رکھنے کی ضرورت ہے. مرد کوشش کرے کہ بلا وجہ ضرور زائد احکام اور بلا ضرورت احکامات نہ دیتا رہے, اور عورت کو راحت پہنچانے کی کوشش کرے, اور عورت کوشش کرے کہ مرد کو راحت پہنچائے اور اس نے جو کچھ کہا ہے تو اس پر اس کے مطابق عمل کرے. دونوں طرف سے یہ کوشش ہوگی تب یہ صحیح طریقے سے نظام چلے گا, ایک طرف سے نظام صحیح نہیں چل سکتا. سوال یہ ہے کہ اگر رشتے کے سلسلے میں کسی بچی کو دیکھنا ہو تو اس سلسلے میں کیا شرعی حکم ہے. جو لکھا ہوا ہے وہ صحیح ہے کہ یعنی وہ چونکہ مرد کو دیکھنا ہے, اور مرد اس طرح دیکھنا یہ نہیں ہے کہ اچھا وہ اس کو میک اپ وغیرہ میں دیکھنا چاہ رہا ہے, بلکہ وہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ اصل میں یہ کیسی لگتی ہے. تو جیسی ہے اس طرح اپنے آپ کو پیش کر دے, اس طرح کے لباس پورا پہنا ہو, سر پہ دوپٹہ بھی ہو, اور چہرہ وہ دیکھ لے, چہرہ ہی دکھانا ہے اور چہرہ دکھا دے, جس سے مرد کو اگر تسلی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے. تو یہ جو لکھا ہوا ہے یہ طریقہ اسی طرح ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے. باقی دیکھنے کا طریقہ کیا اختیار کیا جائے, اس میں بس اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھنے کے بعد اگر منع کر دیا جائے تو منع کرنے کی صورت میں کسی کا دل نہ دکھے. عام طور پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب باقاعدہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور مرد بھی ایسا ہے, ایک تو ہوتا ہے کہ اچھا بس ٹھیک ہے میں دیکھ لوں, تاکہ مجھے دیکھنے کے بھی مقصد دو ہوتے ہیں. ایک تو مقصد ہوتا ہے کہ دیکھنے کے بعد اب دل جڑنا, دلوں میں آپس میں تعلق کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, یہ تو اچھی بات ہے اور یہ مقصد ہے, نکاح میں ایک مقصد ہے, دلوں میں جوڑو. تو یہ اس مقصد سے اگر دیکھا جا رہا ہے بہت اچھی بات ہے. دیکھنے کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ اچھا میں دیکھ لوں پسند بھی ہے یا نہیں, ایسا نہ ہو کہ پسند ہی نہ آئے. تو اگر کسی مرد کے ذہن میں یہی ہے کہ وہ شکل ہی کی بنیاد پر فیصلہ کرنا چاہ رہا ہے اور شکل نہیں اچھی لگی تو وہ منع کرے گا, اور بچی کو ظاہر ہے اگر یہ پتہ چلے گا کہ میری شکل اس کو اچھی نہیں لگی, مجھے فیل کر دیا گیا, میں شکل و صورت میں اچھی نہیں ہوں, تو ظاہر ہے اس کا بھی دل ٹوٹے گا. تو اس کے لیے کوئی اور طریقہ کوشش کر لی جائے, کوئی اور طریقہ ایسا اختیار کریں کہ سرسری طور پر مرد کسی طریقے سے, لڑکا کسی طریقے سے دیکھ لے, اس کی بچی کے گھر والوں کی اجازت سے دیکھ لیں, کسی طریقے سے دیکھ لیں, تاکہ ایسا نہ ہو کہ پہلی مرتبہ دیکھ کر وہ فیل ہی کر دے, ہاں دیکھ لیا ہے اور تقریباً ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ہاں ہی کہنا ہے, اچھا اب دوبارہ باقاعدہ دیکھنے کا انتظام کر لیں تاکہ اب دیکھ کر پکا فیصلہ کر لیں ہاں یا نہ کا. یہ پاس چیزوں میں اس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. ایک صحابی تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے, ایک صحابی تھے, ان کو کسی جگہ نکاح کا ارادہ تھا, لیکن ان کو یہ بھی تھا کہ پتہ نہیں یہ اس گھر کی عورتیں شکل و صورت کے لحاظ سے کیسی ہوتی ہیں. تو فرماتے ہیں کہ میں نے کوشش کی کہ چھپ کر کسی طریقے سے اس کو دیکھ لوں, تو میں نے چھپ کر دیکھ لیا اور میں نے دیکھا کہ نہیں اس کی شکل بالکل ٹھیک ہے, پھر میں نے پیغام بھیجا. تو دیکھنے کی, چھپ کر دیکھنے کی, والدین, اس کی بچی کے والدین کی اجازت سے ہو, والد کی اجازت سے ہو, تو چھپ کر دیکھنے کی اور بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں, وہ ہر شخص اپنے لحاظ سے سوچ سکتا ہے کہ کیا شکل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، رات کو انشاءاللہ 10 بجے جمع ہوں گے درود شریف اور دعا کے لیے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.